परम पूज्य महाराज श्री एवं भक्तजन, गुरु का ज्ञान और विज्ञान दोनों ही हमारे लिए और इस लोक के लिए उपकारक है। जबकि आधुनिक विज्ञान कुछ देर के लिए उपकारक है, उसका जो फल है अंतिम वह कहीं न कहीं से विसंगति प्रदान करता है। लेकिन जो गुरु ज्ञान और विज्ञान है उसका सबके साथ ऐसा तालमेल है कि उसका अंत भयावह नहीं है। क्योंकि विज्ञान के आविष्कार दोनों ही पक्षों को प्रदान करते हैं, सुख देते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट भी उनसे संभव है। जबकि गुरु के विज्ञान से साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि हर जगह हम सेलेक्ट होते हैं। और हर जगह रिस्पेक्ट मिलता। ये गुरु का विज्ञान है, क्योंकि जो विज्ञान है उसमें विज्ञ है, विज्ञ विशेषेण जानातीति विज्ञ। विशेष क्या है वह? तो सामान्य जो संसार है उसकी बातों को हम तो जानते ही हैं। अंतर्निहित इस संसार की उत्पत्ति हमारे आत्मा के अंदर ही है, इससे हम विज्ञानी बन जाते हैं। आत्मज्ञान के द्वारा विज्ञान के ज्ञाता हो जाते हैं। क्योंकि बाह्य जो विज्ञान है, बहुत सारे साधन और सामग्रियों का एक पुलिंदा खड़ा होता है और एक दूसरे पर अपना अहंकार मढ़ता है कि हम बहुत बड़े बलिष्ठ हैं। परमाणु परीक्षण करता है तो कहीं न कहीं से धूमकेतु छोड़ता है, तो जिससे यह प्रकृति प्रदूषित होती है। लेकिन जो आत्मज्ञान, जो योगियों का विज्ञान है, वह विज्ञान किसी को प्रदूषित नहीं करता है, बल्कि बाह्य प्रदूषण को भी वो दूर कर देता है। यह विज्ञान की परंपरा है। एक उदाहरण के तौर पर आप समझ लें, जैसे प्राचीन काल में जितने भी अस्त्रों का निर्माण हुआ, चाहे वरुणास्त्र हो, चाहे आग्नेयास्त्र हो, जिस ब्रह्मास्त्र हो, जिस व्यक्ति का नाम लेकर छोड़ा जाता था उसी व्यक्ति को जाकर लगता था। और आज यदि आप कुछ ऐसा छोड़ते हैं तो वह प्रकृति में कितने लोगों को लिए संहारक बनता है। इसलिए वह विज्ञान आज के विज्ञान से आगे था। बहुत लोग आक्षेप करते हैं कि नहीं नहीं, ये तो पंडित लोग खा करके बैठे रहते हैं, कुछ कहते करते नहीं है, बस खाली कहते हैं पुराने जमाने में ऐसा था। समाज में हमको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं। हमने कहा भैया ऐसा है कि अब हम लोगों ने तीन तीन युगों में अपना विज्ञान फैलाया है, अब कलयुग में आपके विज्ञान की जरूरत है, हमारा आराम काल चल रहा है। तो जब शेर सोता हो तो ये मत समझ लेना कि वह जो है कुछ करता नहीं है। वो अभी आपको अवसर दिया है, आप जितना चाहते हो कर लो। वह अभी आराम कर रहा है, क्योंकि आराम कल्प वृक्षाणाम, सबका उसके पास चारे चार युग का अनुरूप जो पुरुष हैं, उन सबके लिए जहां पर अवसर हो वह हमारा विज्ञान है। इसलिए आपको दिया है कि कलयुग में आप अपना विज्ञान जितना फैलाना है फैला लो। हम तो बता देंगे कि यतल बितल सुतल तलातल पताल रसातल महातल है, आप मंगल पर जाओ, आप चंद्रमा पर जाओ, आपको जहां जहां जाना है सारे देश के पैसे खर्च करके जाते रहो, और जहां जहां प्रजा को बसाना है बसाओ, लेकिन धरती पर लोगों को चैन से रहने दो, आंतरिक कलह मत मचाओ, अहंकार का बड़ा आडंबर मत खड़ा करो, क्योंकि हमारे यहां दैत्य भी लोग ऐसा करते थे। तो कहते हैं कि महाभारत में अन्य जगह में भी पापी लोग थे तो अभी भी है तो क्या खराब है। महाभारत में तो द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भीष्म पितामह देख रहे थे, पांचे पांच पति वहां पर विराजमान थे, फिर भी कोई नहीं बोला। आज तो हम लोग बोलते हैं, हम तो उनसे अच्छे हैं। कहा भाई आप उनसे अच्छे जरूर हो, लेकिन हम आपसे कहते हैं आप दुशासन मत बनो, आप दुर्योधन मत बनो। इसके लिए महाभारत की कथा आपके सामने कही जाती है, इसके लिए नहीं कि उस समय दुशासन था तो हम भी दुशासन बनेंगे। अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए, वो तो आपको एक दृष्टांत दिया जा रहा है। तो ये जो ज्ञान और विज्ञान है यह युगानुरूप बढ़ते और घटते रहता है, लेकिन जो शास्त्र है, महाराज श्री की एक पंक्ति थी उस कथा में मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो महर्षि हैं, ऋषि हैं, जो मुनि हैं, महात्मा हैं, उनका शास्त्र ही शस्त्र है। तब शास्त्र बलम मम शस्त्र बलम, राजा कहता है मेरा शस्त्र बल है, तो शस्त्र बल पापियों के लिए होता है क्योंकि उनको प्राण बचाने के लिए वो कुछ भी करते हैं, और जो शास्त्र की आज्ञा से मर्यादित होते हैं उनको शस्त्र की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि दंड नीति तो सबसे अंतिम नीति है जीवन जीने के लिए। सबसे पहले तो शाम नीति है, फिर दाम नीति है, और उसके बाद विभेद है, दंड है। तो दंड अंतिम नीति है। हमारा कोई पराया ही नहीं है जिसके साथ हम पर्वत व्यवहार करें तो फिर दंड देने के लिए कोई कार्य ही नहीं करेगा, कोई गलत कार्य ही नहीं करेगा। हमारे यहां न कोई भूखा रहेगा और न ही कोई चोरी करेगा, क्योंकि उसकी कामना हम पहले ही पूरी कर देते हैं। लेकिन यदि हम संग्रह करेंगे और खिलाएंगे नहीं तो वही संग्रह चोरी का स्वरूप धारण करेगा। तो यहां यह है, जो आता है वो खा लेते हैं और खिला देते हैं, क्योंकि धन की तीन गति है, दानम भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंते तस्या तृतीया गतिर्भवती। धन की तीन गति है, पहली गति तो दान है, दे दो, दे करके शांत हो जाओ तो शत्रु पैदा होगा ही नहीं। भोग दूसरी गति है, इष्ट मित्र जन के साथ भगवान को भोग लगा करके प्रसाद रूप में वितरण कर दो, नहीं तो तृतीय गति है कि रखे रहोगे तो न खाओगे न दोगे तो ले जाएगा दारोगा, रो कर दो या गा कर दो, पुलिस वाले आएंगे, कोई न कोई चोरी करेगा तो चोर को पकड़ने के लिए भी पैसे लेके जाएंगे, क्योंकि कलयुग है, दारोगा। तो रो कर दो या गा कर दो, इससे अच्छा है कि पहले ही भगवान का नाम लेकर के, भगवान का ध्यान करके दे दो, सब परमात्मा के संतान है। तो ये शास्त्र का शासन है, और शास्त्र का शासन तो मारने वाले को भी कष्ट देता है। अशोक ने इतने सारे लोगों का वध कराया, बाद में अहिंसा धर्म स्वीकार किया, इसलिए हिंसा करने वाला शांत नहीं रहता है, उसके अंदर क्षोभ तो उत्पन्न होता ही है। इसलिए जो शिव कर्म है भगवान विष्णु का, वह हमेशा ही उनके हृदय में विराजमान रहता है। हम भी हमेशा शिव का, भद्र का चिंतन करते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण की बात चल रही थी, भगवान श्री कृष्ण के लिए जितने लोग चाहते थे उनके चहेता थे, जितने लोग उनको पसंद करते थे सबकी तृप्ति उन्होंने एक ही शरीर से कर डाला। आठ आठ पटरानियों के सहित और भी 16,000 जो रानियां थी उनके साथ भी उनके संबंध हुए। कहा क्यों? तो उनके पास जो विद्या थी, आत्मज्ञान की विद्या थी, वो योगेश्वर थे। इसलिए योग शक्ति के बल से, जैसे यहां एक महाराज श्री की ज्योति अनेक भक्तों के हृदय में विराजमान रहती है और सब उनका रसपान करते हैं, उसी तरह से एक ही परमात्मा अनेक गोपियों के हृदय में विराजमान है और वो रस का पान कर रही है और वह प्रेम घट नहीं रहा है, क्योंकि प्रेम जितना किया जाता है वह उतना ही बढ़ते जाता है, घटता नहीं है। 9 का जो अंक है इसको आप द्विगुणित करें तो 9 × 2 = 18 होता है, 8 और 1 जोड़ दीजिए तो 9 हो जाएगा, फिर 9 × 3 = 27 होता है, 2 और 7 जोड़िए तो 9 होने वाला है, 9 × 4 = 36 होता है, 3 और 6 जोड़ दीजिए तो भी 9 होने वाला है। तो जो 9 का अंक है वह प्रेम वाला अंक है, वह हमेशा बढ़ते ही रहता है। तो 9 के अंक की तरह से जो परम